सत्यसापिहितं मुखं तत्त्वं पूषमपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फल स्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु उनके समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। अनुवाद को दोहराइए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतल। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। ऐसा कोई भी स्थान संसार में नहीं है जहां श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण हर कण में, हर अणु में उपस्थित हैं, लेकिन केवल वो व्यक्ति भगवान को देख पाते हैं या उनके उपस्थिति को समझ पाते हैं जिनके आंखें हैं देखने के लिए। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि भगवान दिखाइए, अगर भगवान हैं तो भगवान हमें दिखाइए। तो भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। जब तक हमें दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होते, तब तक हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। और भगवान को देखने के पहले हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान को देख नहीं पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, भक्त्यात्वनन्य शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता हूं। अनन्य भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है मुझे जानने के लिए। भक्त्या त्व अनन्य शक्य, केवल अनन्य भक्ति से यह शक्य है, यह संभव है कि तुम मुझे जान सकोगे। अहम एवं विधो अर्जुना, विधा मतलब विधि, ज्ञान प्राप्त करना, भगवान को जानना। अहम, भगवान कह रहे हैं मुझे। मुझे मतलब कौन? श्री कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे निराकार स्वरूप को या मेरे परमात्मा स्वरूप को। भगवान कहते हैं अहम, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन के लिए, तो इसका मतलब है भगवान कहते हैं केवल भक्ति करने से ही तुम मुझे जान सकते हो। और आगे बताते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। तो भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले सुनना चाहिए, जब सुनेंगे तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, जब ज्ञान प्राप्त होगा तो जान जाएंगे भगवान कौन है। इसलिए कहते हैं पहला शब्द कहते हैं ज्ञातुम। ज्ञातुम मतलब पहले मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो। जब ज्ञान प्राप्त करोगे तो फिर बाद में क्या कहते हैं द्रष्टुम, फिर मुझे देख पाओगे। और जब देखने के लिए योग्य हो जाओगे तब तत्वतः प्रवेशतुम, फिर मेरे नित्य लीला में प्रवेश कर पाओगे। अर्थात भगवान के धाम में जाकर हम सनातन समय, हम हमेशा के लिए शाश्वत जीवन बिता सकते हैं, भगवान के संग में रह सकते हैं, उनके शाश्वत लीलाओं में शामिल हो सकते हैं। हम जब हमारे आचार्यों की वंदना करते हैं या प्रेमध्वनि मंत्र जब हम कहते हैं तो कभी कभी ये भी कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय, है ना। तो नित्य लीला प्रविष्ट क्या है कि भगवान के नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। जैसे हम यहां कहते हैं संसार में लोग कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया, मतलब इनका निधन हो गया। तो संसारी दृष्टि से देखा जाए तो जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो महान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति कोई महान बात नहीं है। क्योंकि अगर जीव स्वर्ग में भी जाएगा स्वर्ग से भी उसका पतन हो जाएगा। जैसे उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसे फिर से ये मृत्यु लोक में उसे लौटकर आना पड़ेगा। इसीलिए नित्य लीला प्रविष्ट का मतलब है कि भगवान के धाम में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। भगवान का धाम जो है ये भौतिक संसार से परे है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, चिन्मय जगत है वो। और उस जगत में जाकर भगवान के नित्य लीला में वो शामिल हो गए हैं, भगवान के पार्षद बन गए हैं। ये बताया जाता है कि जब भक्ति कर करके बहुत जन्मों से जब व्यक्ति भक्ति करता है और अपने भक्ति को परिपूर्ण अवस्था की प्राप्त कर लेता है और शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो सीधा पहले भगवान के धाम में नहीं जाता। पहली बात तो ये है कि भगवान की भक्ति तक पहुंचने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, बहुत सारे जन्म लगते हैं। भगवान बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की खोज में है, वो समझ सकता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण सर्वम इति सब कुछ है। और फिर वो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है। और ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं लेकिन अति दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। तो बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है। और ऐसा व्यक्ति को एक ही जन्म नहीं लगता है भक्ति पूरा करने के लिए, कई जन्म लग जाते हैं। और इसके अंत में जब शुद्ध भक्त बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो भगवान के धाम में जाता है। शास्त्र भागवत में भी बताया हुआ है और प्रभुपाद जी भी बार बार बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे जो जीव है जिसने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, भगवान पहले ऐसे जीव को उनके ब्रह्मांड में होने वाले कोई लीला में प्रवेश देते हैं, अनुमति देते हैं वहां प्रवेश करने के लिए। और फिर वहां ट्रेनिंग प्राप्त करके फिर वो भगवान के धाम में जाते हैं। जैसे आप तो जानते हैं कि भगवान की लीलाएं भौतिक जगत में नित्य हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया सनातन गोस्वामी को कि जिस प्रकार से सूरज का उदय होता है, सूरज थोड़े समय के लिए रहता है और फिर सूरज अस्त हो जाता है, और कहीं और सूरज का उदय होता है, सूरज आकाश में आता है ऊपर और फिर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव जो है वो सूर्योदय के समान है और भगवान का तिरोभाव जो है वो सूर्यास्त के समान है। जिस प्रकार से सूरज उदय के समय उसका जन्म नहीं होता है और न ही अस्त होने के समय उसकी मृत्यु होती है, उसी समय भगवान जब आविर्भाव लेते हैं, प्रकट होते हैं यह संसार में, तो वो जन्म नहीं लेते, केवल प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से सूरज हमारे दृष्टि में प्रकट हुए हैं, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरज सूर्यास्त के समय अदृश्य हो जाता है, हमारे दृष्टि से बाहर चले जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने संसार में लीला समाप्त करके अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का जन्म होता है और भगवान की मृत्यु होती है। भगवान के लिए ऐसी चीजें हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान जैसे यहां बता रहे हैं क्या है, अजम अजह, अजह मतलब जिनका कोई जन्म नहीं है, अजन्म है भगवान, और अव्यय, अव्यय मतलब जिनके शरीर का नाश कभी भी नहीं होता है, उनका सच्चिदानंद शरीर है। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं जाते हैं। अब जैसे इस पृथ्वी लोक में, इस ब्रह्मांड में आके भगवान ने 5000 वर्ष पहले लीला की, और यहां 125 साल के करीब यहां रहे, कई लीलाएं की, जैसे पूतना का वध किया, अघासुर का वध किया, कंस का वध किया, ऐसे कई लीलाएं की। और जैसे ही उन्होंने यहां पूतना का वध किया, भगवान श्री कृष्ण को ही और दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं, और वहां वो पूतना का वध कर रहे हैं, और यहां अघासुर का वध कर दिया, तो कहीं भगवान और दूसरे ब्रह्मांड में कहीं अघासुर का वध शुरू कर रहे हैं। तो एक ही लीला को अगर देखेंगे, पूतना का वध, तो पूतना का वध इस ब्रह्मांड में चल रहा है, फिर और कहीं, फिर और कहीं, फिर और कहीं, फिर और कहीं, और इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हर सारे भौतिक जगत में भी नित्य रूप से चल रही है। भगवान के धाम में तो नित्य लीला है ही भगवान की, लेकिन ये ब्रह्मांड में भी, ये भौतिक जगत में भी भगवान की लीलाएं ऐसे होती हैं। मतलब भौतिक संसार में भी भगवान की लीलाएं समाप्त नहीं होती है, केवल उस वक्त समाप्त होती है जब सारे सृष्टि का नाश हो जाता है, और सब सारी सृष्टि महाविष्णु में फिर से महाविष्णु जी समेट लेते हैं अपने आप में। बाकी समय जो है भगवान की लीलाएं हर जगह चल रही होती है। तो भगवान अपनी लीला एक यहां पर समाप्त करते हैं, और कोई जगह में जाते हैं भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में, और वही लीला फिर से करते हैं वहां पर, और फिर और एक जगह जाकर, और एक जगह, और एक जगह। इस प्रकार से भौतिक संसार में भी भगवान की लीलाएं नित्य है। तो ऐसे शुद्ध भक्त को पहले ऐसे कहीं जगह में जहां भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसे लीला में प्रवेश मिलता है, भगवान के पार्षद बनते हैं, भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं उनसे ट्रेनिंग उनको मिलता है, और फिर भगवान के धाम में चले जाते हैं। यह बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण यहां प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो उनके जो पार्षद थे, कई तरह के पार्षद थे, जो ब्रजवासी थे, कई तरह के थे। उदाहरण के तौर से गोपियां, गोपियां ऐसे थोड़ी थी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान के धाम से आई थी, यहां नित्य सिद्ध है वो। लेकिन कोई ऐसे गोपियां भी थी जो पहले जन्म में, इसके पहले वो ऋषि मुनि थे। जैसे आपको मालूम है कि जब प्रभु रामचंद्र जी वो दंडकारण्य से गुजर रहे थे, दंडक वन से गुजर रहे थे, तो वहां के जो ऋषि मुनि थे, भगवान के भक्त थे, वो चाहते थे कि प्रभु रामचंद्र जी के साथ में माधुर रस का वो संबंध स्थापित करें, जैसे सीता देवी का है प्रभु रामचंद्र जी से। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बताया कि मैं अभी राम अवतार में हूं, मैं, मेरे एक ही पत्नी है और वो है सीता देवी, लेकिन अगले बार जब मैं जन्म लूंगा तब मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर पाऊंगा। तो इसलिए जब वही प्रभु, वही भगवान, जब कृष्ण परम भगवान जो कृष्ण के रूप में आए, तो उस समय उन्होंने सारे गोपियों की इच्छा पूरी कर दी, और ये ऋषि मुनि जो हैं, ये गोपियों के रूप में आए और भगवान का वो संग कर पाए। तो इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिला, जो नित्य पार्षद है उनके अंडर वो ट्रेनिंग में रहे, और फिर जब उनका जो भी मल, एक कण मात्र जो भी कलमश जो भी बाकी रह गया था हृदय में, वो भी खत्म हो गया, और वो अंत में फिर भगवान के धाम में चले गए। तो देखिए भगवान कितने अच्छे ढंग से व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले ज्ञातुम, दृष्टुम और फिर प्रविष्टुम, पहले हमें जानना चाहिए, जान कैसे सकते हैं, सुनकर, सुनने के बाद फिर देख सकते हैं, देखने के बाद फिर प्रवेश कर सकते हैं उनकी लीला में। तो देखिए ये श्लोक कितना गहरा है, कृपा करके ये एक श्लोक आप सब लोग याद कर लीजिएगा, 11वें अध्याय में है गीता का। भगवान ये नहीं कहते हैं प्रवेशतुम दृष्टुम ज्ञातुम, नहीं, ये नहीं कहते पहले लीला में प्रवेश करो, फिर मुझे देखो, फिर मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूं, नहीं। भगवान कहते हैं पहले जानो, फिर देखने की बात करो। अच्छी तरह से सुनोगे, श्रवण करोगे, मेरे बारे में साधना भक्ति अच्छी तरह से करोगे, तब चल के तुम्हें मेरा दर्शन एक न एक दिन होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे लीला में प्रवेश कर पाओगे। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं भागवत में कि हमें भगवान को अपने आंखों से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें अपने कानों से देखने का प्रयास करना चाहिए। कानों से कैसे देख सकते हैं भगवान को? भगवान के बारे में सुनकर, क्योंकि भगवान परम सत्य है, उनके बारे में जो भी वाणी है, जो कथा है, कृष्ण कथा में और कृष्ण के रूप में, सच्चिदानंद रूप में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, वो कृष्ण को देखने के बराबर ही है। यहां तक कि हम कह सकते हैं कि कृष्ण के बारे में श्रवण करना कृष्ण को देखने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां इस बात की पुष्टि हो रही है। कई लोगों ने कृष्ण को देखा, जैसे दुर्योधन थे और कई लोग थे, कृष्ण को देखा लेकिन कृष्ण को नहीं जानते थे, कृष्ण के बारे में सुना नहीं था कि वास्तव में कृष्ण कौन है, कैसे है, उनकी महिमा क्या है, ठीक तरह से उनको मालूम नहीं था। इसलिए देखते हुए भी कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे शिशुपाल जब कृष्ण का अपमान कर रहे थे, कितने सारे लोग थे, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, कितने लोग थे जिनको ये नहीं मालूम था कि कृष्ण कौन है। और ऐसे कई लोग भी थे जो जानते थे अच्छी तरह से, जैसे पांडव थे, भीष्म थे, ये सब जानते थे कि कृष्ण कौन है, हमारे आराध्य भगवान है। तो देखते हुए भी वो नहीं जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानता है और नहीं देखता है, फिर भी अपने हृदय में वो देखता है, तो ऐसा भगवान का दर्शन श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए भगवान का दर्शन करना कोई सस्ती बात नहीं है। जैसे भजन में कहते हैं प्रभु हमें दर्शन दे दो, है ना, ऐसे मार्केट में आप भजन खरीदेंगे, ऐसे कई भजन होते हैं जो मांगते हैं दर्शन। अरे दर्शन करके क्या करोगे, जब जानते नहीं हो भगवान को, ऐसे भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ हो। पहले जानो, सुनो, फिर भगवान का दर्शन करने की अभिलाषा रखो। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लीला कर रहे थे, उनकी उनका विवाह नहीं हुआ था उस समय, आखिर में धीरे धीरे से उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह कर ली, लेकिन जब पहले गए तो विवाह नहीं हुआ था। और उनकी पहली पटरानी कौन थी? रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी का विवाह कैसा हुआ उनके साथ? रुक्मिणी देवी थी विदर्भ राजा की पुत्री, उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। हाँ, वैसे तो कृष्ण के नित्य वो पत्नी है ही भगवान के धाम में भी, लेकिन ये उनकी लीला है। लेकिन ये लीला में उन्होंने इस जन्म में भगवान को कभी देखा नहीं था, केवल उनके पिताजी के दरबार में संत ऋषि मुनि आया करते थे, जैसे नारद मुनि वगैरह आया करते थे, और बातचीत के दौरान कृष्ण के बारे में वो लोग बहुत कुछ कहा करते थे, कृष्ण के गुणगान करते थे, और रुक्मिणी देवी वहां सुनती थी जब कृष्ण का गुणगान चल रहा होता था। और सुन सुन के इतना आकर्षण पैदा हो गया रुक्मिणी देवी के हृदय में कृष्ण के प्रति, कि उन्होंने हृदय में निश्चय कर लिया कि मैं केवल कृष्ण से विवाह करूंगी और किसी और से नहीं करूंगी। हालांकि उनके रुक्मिणी देवी के पिता ने वायदा दे दिया था कि आपका विवाह जो है वो शिशुपाल से होने वाला है, और रुक्मी के बंधु थे, दोस्त थे शिशुपाल, रुक्मी थे रुक्मिणी के भाई, लेकिन फिर भी रुक्मिणी ने कहा नहीं। और रुक्मिणी ने पत्र भेजा कृष्ण को एक ब्राह्मण के द्वारा कि मैंने आपके गुणगान सुने हैं, आपकी महिमा मैंने सुनी है, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आपके अलावा और कोई मेरे लिए योग्य पति नहीं है, मैं आपसे ही विवाह करूंगी, तो अगर आप कृपा करें तो आके मुझे उठाकर ले जाइए। क्षत्रियों का विवाह अलग अलग प्रकार से हुआ करता था। क्षत्रिय समाज में ये इस प्रकार का विवाह ये अलाउड था। आजकल इसका मतलब यह नहीं कि हम ऐसे नकल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय और वैश्य के बीच में क्या अंतर होता है? क्षत्रिय वो होता है जो अपने मन में कोई ठान लेता है बात कि मुझे करना है, तो देख लेता हूं कौन मुझे रोकेगा। तलवार हाथ में है, कोई आए हमारे सामने सबक सिखाएंगे उनको, कौन रोक सकता है? क्षत्रिय भाव। तो हम किसी से विवाह करेंगे, देखते हैं कौन रोक सकता है, तो उठा के ले जाते थे, यह क्षत्रिय है। लेकिन वैश्य क्या है? वैश्य मतलब संसार को भोगने की इच्छा रखता है लेकिन वो ताकत नहीं है, इसलिए वैश्य पैसा कमाकर फिर पैसे से सब अपना काम करा लेता है। यह है वैश्य और क्षत्रिय में अंतर। क्षत्रिय जो होता है वो रजोगुण से प्रभावित होता है, वैश्य भी रजोगुण से प्रभावित होता है, लेकिन तमोगुण का भी थोड़ा प्रभाव आता है, और इस तमोगुण के थोड़े से प्रभाव की वजह से ताकत या साहस में थोड़ी कमी होती है। लेकिन क्षत्रिय ऐसा नहीं है। क्षत्रिय जो है युद्ध युद्ध चाहता है, युद्ध नहीं हो तो रह नहीं सकता, कोई मारपीट चाहिए क्षत्रिय को, होना है, जब तक तलवार को युद्ध न हो कुछ न हो क्षत्रिय रह नहीं सकता, इसलिए उनके लिए शिकार वगैरह की अनुमति दी जाती थी, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, रजोगुण में है वो। तो क्या कृष्ण भी आए, कृष्ण उस समय क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे थे, तो आए घोड़े पर आए और रुक्मिणी देवी को उठाकर ले गए और सब उनका पीछा करने लगे, रुक्मिणी और अन्य जो भी वहां आए थे ये इच्छा लेकर कि हम रुक्मिणी से विवाह करेंगे, सब उनका पीछा करने लगे और कृष्ण ने सबको हरा दिया और रुक्मिणी देवी को उठाकर चले गए। तो रुक्मिणी देवी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, लेकिन कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि किस सुना था रुक्मिणी देवी ने। लेकिन अन्य थे यहाँ, जैसे शिशुपाल थे और दंतवक्र थे, दुर्योधन थे, सब ने कृष्ण को कई बार देख चुके थे, बचपन से देख चुके थे, लेकिन फिर भी नहीं जानते थे कृष्ण को। क्यों? क्योंकि यहां बताया जाता है, भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम ना भी जानाती लोको माम अजम अव्ययम। कि ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो मूर्ख हैं, मतलब जो मेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष करते हैं मेरे से, मैं इनकी दृष्टि बंद कर देता हूं, इनके आंखों के सामने एक पर्दा एक आवरण डाल देता हूं जिससे वो मुझे पहचान नहीं सकते। मैं उनके आंखों के सामने होते हुए भी मुझे वो एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, मैं सब प्राणियों का स्वामी हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक हूं, मैं सब चीजों का उगम स्थान हूं, स्रोत हूं, मैं परम सत्य भगवान हूं। नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य समाज में एक साधारण मनुष्य की तरह उठता हूं, बैठता हूं, मेरा रहन सहन भी दूसरों की तरह लगता है बाहरी दृष्टि से, उसीलिए वो भी मुझे उनके समान एक व्यक्ति समझते हैं, लेकिन मेरी महिमा नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि माया के प्रभाव से वो मुझे नहीं जान सकते। यहां योग माया समावृत, योग माया का शब्द इस्तेमाल का प्रयोग किया गया है। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है, मतलब भगवान के धाम में योग माया देवी भगवान की लीला में सहायता करती हैं, और ये भौतिक संसार में भी जब भगवान अवतार लेते हैं उस समय योग माया भगवान की सेवा करती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब कृष्ण भगवान ने निश्चय किया कि मैं पृथ्वी लोक में अवतार लेने वाला हूं, उस समय इन्होंने योग माया देवी को बुलाया और कहा कि मैं भी अवतार लेने वाला हूं, और अलग अलग देवी देवता जो हैं वो भी यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं, अलग अलग परिवारों में, इसलिए आप जाकर मेरे भक्तों को भी भ्रमित करो और जो अभक्त हैं उनको भी भ्रमित करो। अभी देखिए ये कौन सी अद्भुत बात है, आश्चर्यजनक बात है। भगवान योग माया को कहते हैं कि आप अभक्तों को भी के आंखों के सामने पर्दा डाल दो और भक्तों के आंखों के सामने भी पर्दा डाल दो। अभी भक्तों की आंखों के सामने पर्दा डालो हम समझ सकते हैं, लेकिन भक्तों की आंखों के सामने पर्दा डालो ये क्यों भगवान ने बताया? तो ये बात के लिए हमें समझना है कि योग माया अकेली नहीं आई, योग माया उनके एक विस्तारित रूप के संग में आई और इस विस्तारित रूप का नाम है महामाया। मतलब योग माया का वो रूप जो भौतिक संसार में काम करता है बद्ध जीवों को अंधकार में रखने के लिए, उसे कहते हैं महामाया। यह भी योग माया का ही एक रूप है, विशेष रूप है। लेकिन महामाया का क्या काम होता है? जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, ईर्ष्यालु हैं, अभक्त हैं, उनको अंधकार में रखने के लिए। महामाया के प्रभाव से जीव कृष्ण से और भी दूर चले जाता है। महामाया के प्रभाव से जीव की विस्मृति बढ़ जाती है, जीव के दुर्गुण बढ़ जाते हैं। तो किसके लिए है महामाया? केवल अभक्तों के लिए। महामाया जो है ये भगवान के भक्तों को कभी छूती नहीं है। महामाया को ये अधिकार नहीं है कि भगवान के भक्तों के वो पास में भी जाए। तो साधारण शब्दों में जब हम भक्तों के संग में बात करते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है, ये माया के प्रभाव में पड़ गए, तो ये माया, हम महामाया की बात करते हैं। ये केवल महामाया है। हम कभी कभी, क्योंकि शुद्ध नहीं हुए हैं पूरी तरह से, इसलिए कभी कभी विस्मृति में पड़ जाते हैं। कोई बुरी आदतें जो पुरानी हमारी होती थी उनमें फिर से फिसल के वो आदतें करने लगते हैं, वो कार्य करने लगते हैं। तो ये सब महामाया के प्रभाव से है। लेकिन भगवान की योग माया एक अलग और निराली चीज है। भगवान की योग माया कभी भी अभक्तों को छूती नहीं है। जिस प्रकार से महामाया कभी भक्तों को छूती नहीं है, केवल अभक्तों के ऊपर काम करती है, उसी प्रकार से भगवान की योग माया शक्ति कभी भी अभक्तों को नहीं छूती है, केवल भक्तों को छूती है। योग माया क्या करती है? योग माया का काम यह है कि भगवान की लीला को और भी मधुर बनाना। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो लीला में शामिल हैं, उनको भगवान के महानता को भुला देना उनके मन में, ताकि ये नहीं समझे कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि अगर ये समझेंगे कि ये भगवान है, तो ये याद अगर रखेंगे तो लीला का मिठास जो है, जो माधुरी है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे ग्वाल बाल एक दूसरे युद्ध कर रहे हैं, युद्ध मतलब कुश्ती कर रहे हैं, और कुश्ती करते समय वो सोचते हैं कि हम कृष्ण के बराबर हैं। कभी कृष्ण से कुश्ती करके जीत लेते हैं, कभी कृष्ण जीतते हैं, कृष्ण को कभी कंधे पर उठाकर ले जाते हैं तो वो कभी कृष्ण को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं, कृष्ण का जो टिफिन डब्बा होता है वो चोरी कर लेते हैं, उनका लड्डू खींच के खा लेते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी कृष्ण उनके साथ शरारत करते हैं, तो कभी ये कृष्ण के साथ शरारत करते हैं, मस्ती एक दूसरे से करते हैं। अगर मान लीजिए ग्वाल बालों को पता होता कि ये भगवान है, तो क्या कुश्ती करते? भगवान के साथ कोई कुश्ती करेगा? अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, भगवान हम क्या कुश्ती कर सकते हैं। तो इसलिए योग माया ऐसे भक्तों के ऊपर पर्दा डालती है कि ये ना समझे कि ये भगवान है। तो ऐसा पर्दा डालने से क्या होता है? भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। लेकिन महामाया जब पर्दा डालती है हमारे आंखों के सामने, तो क्या होता है? भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो देखिए, कई लीलाएं हैं भगवान के, जो अगर श्री कृष्ण जब यहां थे, इतने सारे लीला किए भगवान ने, तो कौन से लीले योग माया के प्रभाव में आए, और कौन से व्यक्ति जो और कार्य थे जो महामाया के क्षेत्र में थे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब जैसे कंस के सामने जब दुर्गा देवी आई, दुर्गा देवी ये कौन है? यही महामाया है वो। और ये जब योग माया महामाया के रूप में आई कंस के सामने, क्या आपको मालूम है इतिहास इसका, कैसे आई दुर्गा देवी कंस के सामने? भगवान ने कहा कि मेरे जो देवकी का सातवां पुत्र है वो मेरा अंश है, जिसका नाम है शेष, अनंत शेष। तो अनंत शेष को आप आकृष्ट करके देवकी के गर्भ से आप माता रोहिणी की गर्भ में आप लगा दीजिए। और इस प्रकार से लोग सोचेंगे कि जन्म के पहले ही देवकी के साथ में पुत्र का अंत हो गया, मृत्यु हो गई, और फिर इसके बाद में मैं देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा और उसे माता स्वीकार करूंगा, और उस समय आप यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश करना और उनकी पुत्री के रूप में रहना, और बाद में नंद महाराज जो हैं मुझे गोकुल ले जाएंगे और ये माता यशोदा के पास में रखेंगे और आपको उठाकर वो लाएंगे जेल में, मथुरा के जेल में, देवकी और वसुदेव के पास में। तो उस समय ऐसा ही हुआ, जब ये नंद महाराज ने कर दिया और कंस आए और कंस ने आवाज सुनी बच्चे की, तुरंत आए और बच्चे को पैर से पकड़ लिया, जैसे छह बच्चों को किया था कि फिर पीट के मार दिया, खत्म कर दिया बच्चों को। तो कंस ऐसे ही मारने वाले थे कि देवकी ने प्रार्थना की कि कंस ये तो बच्ची है, लड़की है, आपका जो आकाशवाणी जो हुई है कि मेरा आठवां लड़का आपको वध करेगा, आपका वध करेगा, लेकिन ये तो लड़की है, लड़की को तो छोड़ दो। लेकिन कंस ने नहीं सुना, इतना भयभीत हो गया था, डर रहा था कि आगे क्या होगा। उसने लड़की को पकड़ के नीचे पीटने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, हाथ से ऊपर जाकर ऊपर गई और ऊपर से अपना आठ बजाने वाला हाथ रूप दिखाकर कहने लगे कि हे मूर्ख, तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें वध करने वाला कहीं और पैदा हो चुका है, अब मुझे तुम मारने का प्रयास क्यों करोगे, इसलिए देवकी और वसुदेव को अभी तंग न करो तुम। जब कंस को यह पता चला तो और भी घबरा गया और फिर तुरंत इनको छोड़ दिया, देवकी और वसुदेव को। तो ये जो महामाया का प्राकट्य था कंस के सामने, ये महामाया का कार्य है। और दुर्योधन, शाल्व और शिशुपाल, दंतवक्र और ये सब जो चीजें, जो लोग थे जो असुरी प्रवृत्ति के थे, ये सब महामाया के प्रभाव में थे। ये इनके लिए योग माया का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो भगवान को देखते हुए भी जानते नहीं थे कि ये कौन है। लेकिन योग माया के क्षेत्र में ऐसे कई सुंदर सुंदर लीलाएं हुई, जैसे माता यशोदा सो रही थी, उन्होंने जन्म दिया बच्चे को, लड़की को जन्म दिया, लेकिन ऐसी गहरी नींद आ गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई आकर बच्ची को उठाकर ले गया और बच्चे को कृष्ण को रख दिया, पता नहीं चला। और नींद से जाग गई तो देखा कि पास में कृष्ण है, सोचा कि मैंने ही कृष्ण को जन्म दिया है। तो ये योग माया का प्रभाव है। और जब नंद महाराज कृष्ण को लेकर मथुरा से वो जा रहे थे गोकुल की ओर, तो उनको यमुना पार करना था, और यमुना पार करते समय क्या हुआ, बारिश आई, बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उस समय अनंत शेष ने आकर ऊपर से एक छतरी के समान वहां रूप धारण किया, और जब वो यमुना जी में की ओर आए तो यमुना जी ने अपने पानी को हटाने का आदेश दिया, तो पानी हट गया और आराम से नंद जी, नंद महाराज अंदर चले गए। और अंदर गए तो अचानक पानी की लहरें ऐसी आ रही थी कि पानी की लहरों की वजह से कृष्ण अचानक गिर गए। उन्होंने ऊपर टोकरी में सर के ऊपर रख के कृष्ण को लिया था ताकि कृष्ण भीग न जाए यमुना जी की नदी में, तो कृष्ण गिर गए। और गिरे नंद महाराज तो पागल जैसे हो गए, सोचिए क्या हालत हुई होगी नंद महाराज की, अपने एक लोग बच्चे को ले जा रहे हैं और बच्चे को हाथ से गिराकर नदी में, और दिखाई नहीं दे रहा बच्चा कहाँ है, तो क्या हालत हुई होगी उनकी, पागल जैसे हो गए, ढूंढ रहे पानी में इधर उधर उधर कहाँ है, और फिर मिल गए। कृष्ण ने अपने आप को फिर से प्रकट कर दिया, कृष्ण ने एक मिनट के लिए अप्रकट कर दिया अपने आप को, फिर से प्रकट कर दिया, फिर नंद महाराज को थोड़ा सांस फिर ले पाए। तो ये क्यों किया, दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये है कि यमुना जी जो है वो चाहती थी कि हम भगवान के चरण का स्पर्श हमारे ऊपर हो जाए, तो इसलिए वो चाहती थी कि कुछ भगवान ऊपर टोकरी में ले जाए तो स्पर्श कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, भगवान अपने योग माया के द्वारा नंद महाराज के प्रेम को बढ़ाना चाहते थे। जब हम ऐसे अवस्था में आते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ जाता है, तो इसलिए नंद महाराज कि ये वो जो चिंता हुई, वो चिंता से उनके सारे अनर्थ जो भी बाकी थे सब खत्म हो गए, भगवत चिंता। क्योंकि कृष्ण के प्रति जब हम चिंता करते हैं कृष्ण कहा कृष्ण कहा, ये जब चिंता ये आतुरता से हमारे भीतर जो भी मल है वो खत्म हो जाता है, शुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारे परंपरा में बताया जाता है कि हमें कृष्ण को खरीदना है, लेकिन कैसे खरीदना है, तत्र लौल्यम एकम अपि मूल्यम। लौल्यम मतलब वो लोभ चाहिए, आतुरता, मुझे कृष्ण चाहिए। ये लोभ जब होगा तो हमारे भीतर जो भी अनर्थ है वो सब जल जाएंगे। जैसे नंद महाराज तो सिद्ध, वो तो नित्य पार्षद हैं भगवान के, लेकिन फिर भी हमें इसे सीखना चाहिए कि ऐसे आतुरता से ऐसे चिंता से हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है। तो नंद महाराज का ये जो चिंता हो रहा कृष्ण का वहां पानी में चले जाने, ये भी योग माया का कार्य था बताया जाता है। और एक कार्य योग माया का और क्या है, देखिए जैसे रासलीला हुई, गोपियों के साथ भगवान ने सब लीला की, तो ये भी भगवान की योग माया है। वैसे लगता था कि एक ही रात बीत गया रासलीला करते करते, लेकिन वास्तव में सारा ब्रह्मा जी का एक रात बीत गया था। ब्रह्मा जी का एक रात यानी कितना, 12 घंटे, उनके 12 घंटे यानी हमारे कितने साल, बहुत सारे साल, करोड़ों करोड़ों साल हमारे बीत गए थे। लेकिन योग माया के प्रभाव से सबको लगा कि हम एक ही रात कई घंटे हम बस रासलीला कर रहे हैं, और हर एक गोपी को लगा कि कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इतने सारे गोपियां थी, सबको लगा कि कृष्ण मेरे साथ में, ये सब योग माया है। तो योग माया क्या करती है कि भगवान के लीला को और भी मधुर बनाती है, भगवान के भक्त और भगवान के बीच में संबंध है उसको और घना बनाती है। तो इसीलिए योग माया भगवान के लीला में उनके भक्तों के साथ लोग योग माया सहायता करती है। और कौन सी लीला, जैसे माता यशोदा, माता यशोदा पीटती थी, कभी छड़ी लेकर मारती थी, जैसे ग्वाल बाल के संग भी वैसे वही बात। अगर माता यशोदा जानती कि ये भगवान है, क्या छड़ी लेकर मार सकती है? आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बोलो कि माता यशोदा भगवान को छड़ी से मारने आई थी तो बोले अरे क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी बोलते भगवान के बारे में, ये तो अपराध है, घोर अपराध हो सकता है, भगवान को कैसे मार सकते हैं छड़ी लेकर। किंतु माता यशोदा मारती, छड़ी लेकर मारती, डांटती है, और ऐसे डांट से कृष्ण को इतना आनंद मिलता है कि बताया जाता है कि माता यशोदा की डांट उनको वेद की स्तुतियों से ज्यादा अच्छा लगता है। माता यशोदा छड़ी लेकर उनके पीछे भागती है और उनके नाना प्रकार के जैसे शब्द बुलाती है, शैतान इधर आओ जल्दी आओ, हाँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब को वैकुंठ स्टाइल में जब कोई प्रार्थना भी करते हैं वो तो अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माता यशोदा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ऐसा प्रेम बहुत अच्छा लगता है। तो योग माया की वजह से माता यशोदा ये नहीं जान पाए कि ये मेरा, कि ये भगवान है, वो सोचती थी ये तो मेरा बच्चा है और मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगी, ये नहीं खिलाऊंगी तो ये मर जाएगा बच्चा। और इसलिए कभी कभी बीच में भगवान क्या करते हैं, योग माया के पर्दा को थोड़ा सा हटा देते हैं और फिर भक्त जो है वो बिल्कुल उसको, भक्त का सर चकरा जाता है, क्योंकि भक्त कुछ अपने मन में एडजस्ट नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। जैसे जब मिट्टी खाई थी भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कहते हैं, तो बलराम जी और अन्य ग्वाल बाल थे माता यशोदा के पास गए कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण कहा मैंने नहीं खाई है, पर हां कृष्ण ने खाई है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर आपको देखना है कि मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई तो मेरा मुंह देखो, मुंह के अंदर देखो। तो कहा ठीक है मुंह खोलो, तो मुंह खोल दिया तो क्या देखा माता यशोदा ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके भीतर एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के भीतर सारे लोक ग्रह और उन ग्रहों के बीच में पृथ्वी लोक और उस पृथ्वी में वृंदावन और उस वृंदावन में नंद महाराज का जो आंगन और उस आंगन में माता यशोदा कृष्ण के मुंह में देख रही है, वही सब देख रही है। तो उस क्षण के लिए भगवान ने योग माया का पर्दा हटा दिया और माता यशोदा का सर चकरा गया, ये कौन है, मेरा बच्चा है कि भगवान है कि कौन है ये, अरे क्या बात है, क्या मैं कर रही हूं। और फिर भगवान ने देखा कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी माँ जो है मेरे लिए ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर से योग माया का पर्दा फटाक से लगा दिया। फिर से माता यशोदा ने कहा ठीक है मैंने कुछ सपना देखा हो, कोई वहम हो गया मुझे, चलो फिर से कुछ पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा खा लिया होगा, कुछ किया होगा पता नहीं, फिर से डांटने लगे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक किसी को यह नहीं पता चला कि कृष्ण भगवान ने मिट्टी वास्तव में खाई कि नहीं खाई। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था, या तो बलराम झूठ बोल रहे थे या कृष्ण भूत झूठ बोल रहे थे, सही है ना? दोनों सही बोले कैसे संभव है? एक बोल रहे खाया, एक कहते नहीं खाया। अब देखिए, लेकिन माता यशोदा ये तय करने जा रही थी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन वो विश्वरूप दर्शन करने के फल से मिट्टी विट्टी सब भूल गई। तो इसलिए आज तक आचार्य कहते हैं कि आज तक हमें यह नहीं पता चला कि कृष्ण ने उस दिन मिट्टी खाई थी कि नहीं खाई थी। तो ये सब लीलाएं हैं, ये भी योग माया के प्रभाव में होता है। और भी हम देखते हैं कि सारे जो ब्रजवासी भगवान के शक्ति का प्रदर्शन भी देखते थे, लेकिन फिर भी ये कृष्ण कौन है सोचते तो थे कि कोई अवश्य कोई विशेष व्यक्ति होगा, कोई देवता होगा कि क्या होगा। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद भी जब ब्रजवासी नंद महाराज के पास में गए, एक सारा ग्रुप लेकर गए और नंद महाराज जी के पास गए और कहने लगे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका बेटा ये कृष्ण ये है कौन? गोवर्धन पर्वत उसने 7 दिन 7 रात उठा के रखा छोटे उंगली पे, ये कौन है आपका बच्चा? हम सोचते हैं कि ये भगवान ही होंगे। तो फिर बस नंद महाराज कहते हैं हंसने लगे, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा है, आप नहीं जानते। ठीक है ठीक है। तो इतना सब होने के बाद भी नंद महाराज सोचते मेरा बच्चा ही है। आप सोचेंगे ठीक है देवी देवता क्या है, ठीक है देवी देवता रक्षा कर रहे हैं उसकी, लेकिन है तो मेरा बच्चा है। उसी प्रकार से जब एक दिन गोवर्धन पर्वत भगवान ने अमावस्या के रात में वो धारण किया था, 7 दिन तक वो चला, भगवान ने धारण करके रखा बाएं हाथ के उंगली पे अमावस्या के रात से शुरू होकर, और फिर 7 दिन बीत गए। 8वें दिन शायद इंद्र आए, इंद्र को जब अच्छी तरह से भगवान ने सबक सिखाया तो इंद्र वहां आए, इंद्र ने क्षमा चाहा, और फिर 7वें दिन ने 9वें दिन आए इंद्र, और 10वें दिन के बाद जो एकादशी 11वें दिन में आई तो नंद महाराज ने एकादशी का व्रत का पालन किया, और अगले सुबह को द्वादशी के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के भी पहले नंद महाराज यमुना जी में स्नान करने गए। तो वहां पर जब गए वास्तव में ये नियमित समय के बाहर था। ऐसे समय होता है कि जब हम समुद्र देव को सम्मान करते हैं कि ये समय से वो कोई अमुक समय होता है रात में जहां हमें स्नान नहीं करना चाहिए, बीच रात के जो 6 घंटे होते हैं उसमें हमें स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसे एक नियम होता है शास्त्रों में बताया जाता है। तो नंद महाराज जब गए थे तो उस समय के बीच में गए थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं हुआ था उस समय। तो जब यमुना जी में स्नान करने गए तो वरुण देव के जो सिपाही थे उन्होंने नंद महाराज को गिरफ्तार कर लिया और वरुण जल के पास ले गए नदी के नीचे। उस समय कृष्ण को पता चला कि क्या हो गया, तुरंत कृष्ण गए वरुण देव के पास और वरुण देव ने कहा हमारी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, हम नहीं जानते थे, हमारे सैनिकों ने गलती कर दी। तो आ गए और नंद महाराज सब देख रहे हैं कि वरुण देव सागर के जो इंद्र हैं, जो देवता हैं, और ये हमारे बाल कृष्ण हमारे छोटे बच्चे कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के घबरा रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रभुपाद कहते हैं कि नंद महाराज सोच रहे हैं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, अगर मैं सुरक्षा नहीं करूंगा तो मर जाएगा। अब सुरक्षा तो कृष्ण ने की नंद महाराज की, नंद महाराज की वहां कष्ट में थे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, ये योग माया है। इसलिए योग माया और महामाया में यही अंतर बताया जाता है। वैसे हैं एक ही, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी सुंदर दृष्टांत दिया करते हैं, जैसे बिजली है, बिजली है एक, लेकिन अगर फ्रिज में वो बिजली जाती है तो फ्रिज के अंदर जो चीजें हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वही बिजली आप हीटर में भेजो, हीटर के ऊपर कुछ आप रखेंगे वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अभी बिजली क्या ठंडा है या गर्म है, बिजली तो वैसे ही है ना, बिजली तो बिजली है, बिजली ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, बिजली वैसे की वैसी। लेकिन जैसी पात्रता होती है, जैसे यंत्र होता है, वैसे गर्मी पैदा हो जाती है, ठंडक पैदा हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति एक है, वो है योग माया। इसलिए यहां पे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। वो कहते हैं मूढ़ों को मैं योग माया शक्ति से आवरण करता हूं, तो अभक्तों को तो योग माया का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यहां पे मतलब है कि योग माया अपने महामाया के रूप में अभक्तों के सामने पर्दा डालती है। तो उसी प्रकार जैसे बिजली अलग अलग यंत्रों में उनकी पात्र अलग अलग पात्रता की वजह से अलग उनमें असर होता है, उसी प्रकार से योग माया जब भक्तों के ऊपर काम करती है तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाती है, और जब वही योग माया अभक्तों के लिए जाती है तो महामाया के रूप में जाती है और उनके लिए और विस्मृति बढ़ा देती है, भगवान से उनको और दूर कर देते हैं। जैसे व्यक्ति की पात्रता है वैसे योग माया उसके ऊपर काम करती है। अगर हमारी पात्रता है कि हम भक्त हैं तो बस योग माया, और अभक्त हैं महामाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीव जो होता है वो हमेशा भगवान की शक्ति के नियंत्रण में रहता है, या तो महामाया या तो योग माया। जीव कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, जीव हमेशा भगवान के शक्ति के वश में होता है। लेकिन हमारी भलाई इसी में है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है, और कहते हैं कि मायाम एताम तरंति थे, जो मेरा शरण लेते हैं वो इस माया को पार जा सकते हैं। तो कैसे हम महामाया के ऊपर जाकर योग माया के नियंत्रण में जा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। ये महामाया की शक्ति को हमें कम नहीं समझना चाहिए, भगवान जैसे ही शक्तिशाली है ये, इसलिए इसको कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि हमारे भक्तों से हमें एक ही शिकायत है कि वो माया से पर्याप्त रूप से डरते नहीं है, जितना डरना चाहिए उतना नहीं डरते हैं। माया तो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें जानना है कि जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जीव की परिपूर्णता इसी में है कि वो योग माया की शरण में जाके योग माया से कहे, अभी आप हमारे जीवन को कंट्रोल कीजिए। और इस प्रकार से ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम, फिर हम प्रवेश कर पाएंगे नित्य लीला, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में जाकर उनका नित्य संग कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न टीका? प्रश्न है कि भगवान के धाम में भी क्या योग माया का प्रभाव रहता है? उत्तर यह है कि भगवान के धाम में ही योग माया का प्रभाव रहता है, और कहीं नहीं रहता है। आप बोलेंगे कि ये कैसा है, अभी आपने बताया कि नंद महाराज के योग माया के प्रभाव में थे वृंदावन में, लेकिन वृंदावन क्या है, भगवान का धाम ही तो है। इसलिए योग माया केवल भगवान के धाम में काम करती है, अन्य जगह में भौतिक संसार में योग माया का कोई काम नहीं है। लेकिन महामाया वहां भगवान के धाम में नहीं जा सकती, योग महामाया केवल भौतिक संसार में। ब्राह्मण वो है जो सत्वगुण में होता है, क्षत्रिय वो होता है जो रजोगुण में होता है, वैश्य वो होता है जो रजोगुण और तमोगुण मिक्स में होता है, दोनों का मिश्रण होता है वैश्य में, और शुद्ध वो होता है जो केवल तमोगुण में होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि कौन किस वर्ण में है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, क्या शूद्र वर्ण। अब देखेंगे हर जगह संसार में गुणों के हिसाब से। इसलिए भगवान क्या बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि वर्ण कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन क्या है, कैसे पता कर सकते हैं, केवल जन्म से नहीं, गुण और कर्म। कर्म ये बात समझना आसान है कि जैसे आदमी काम करता है हम समझ सकते हैं कि वो क्या है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है। जैसे कोई व्यक्ति को ज्यादा किसी एक प्रकार के कार्य में रुचि है, जैसे फिलॉसफी दर्शन में बहुत है, तो हम समझ सकते हैं वो थोड़ा ब्राह्मण टाइप का आदमी है। तो इस प्रकार से कार्यों से हम समझ सकते हैं। लेकिन गुण का क्या मतलब है, गुण मतलब ये तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जैसे गुण का प्रभाव होता है व्यक्तियों के ऊपर, वैसे वैसे हम समझ सकते हैं कि वो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है। इसलिए गुण कर्म विभाग दोनों के साथ साथ हम समझ सकते हैं, वर्ण का विभाजन हो जाता है। रात को स्नान करना है कि नहीं करना है, रात को कर सकते हैं, लेकिन बीच रात का समय, बीच रात के समय की बात होती है, मतलब बहुत लेट और बहुत जल्दी, जैसे 12 बजे 2 बजे रात को, यह समय हमें सब स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी हो, ये दूसरी बात है, आप दूर से आए हैं, बाहर गांव से आए हैं, अलग बात है, लेकिन जनरली हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, और वैसे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं, भगवान की लीला जहां भी होती हैं, उनके धाम से उनके नित्य पार्षद आते हैं लीला में शामिल होने के लिए, और साथ साथ ये ब्रह्मांड से जो ऊपर ऊपर चलते हुए जो शुद्ध होते जा रहे हैं, जो योग्य हो रहे हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, वो भी शामिल होते हैं उसमें। तो ऐसे जीव को जो साधना सिद्ध है, जो साधना करके फिर भगवान के लीला में शामिल होने की योग्यता प्राप्त कर चुका है, ऐसे जीव को भौतिक जगत में किसी न किसी ब्रह्मांड में एक जगह ऐसे भगवान की लीला में प्रवेश मिलता है। फिर वहां उसको ट्रेनिंग मिलता है कि कैसे भगवान के धाम में करना चाहिए, फाइनल ट्रेनिंग जो है मिल जाता है, और वो वहां से होकर फिर वो भगवान के धाम में अंत में चले जाता है। होते हैं अलग अलग, मतलब आपका प्रश्न है कि क्या पूतना वही जीव है, यहां जो पूतना है वही क्या पूतना है, ये जरूरी नहीं है, वहां पूतना कोई अलग जीव हो सकती है। और इसीलिए देखते हैं कि अलग अलग ब्रह्मांडों में कभी कभी भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन, एक ही लीला का अलग वर्णन सुनते हैं हम। जैसे भगवान ने केशी का वध किया, केशी कौन सा, एक असुर था जिसने घोड़े का रूप लेकर वो आया था वृंदावन में। भगवान ने केशी का वध कैसे किया, किसी को याद है, मुंह में हाथ डाल दिया भगवान ने, घोड़े के मुंह में हाथ डाल दिया और घुमाकर फिर बन को मार दिया। ये 5000 वर्ष पहले ऐसे लीला की। लेकिन अन्य पुराणों में ऐसे भी वर्णन है कि एक और जगह भगवान केशी के ऊपर बैठ के सारे ब्रह्मांड में वो घोड़ा गाड़ी करते हुए उनको आए, और कालिया दमन, यहां कालिया दमन करके फिर हम जानते हैं कहानी, कथा जानते हैं। लेकिन और एक ब्रह्मांड में कालिया दमन का की लीला जब हुई, तो भगवान ने भी वैसे ही घोड़ा गाड़ी करके कालिया के ऊपर वो सवार होकर वो घूम रहे थे। तो ऐसे वही लीला में जब अलग अलग जगह अलग अलग समय की जाती है, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो जीव भी अलग हो, क्योंकि उससे वो लीला, उस लीला में असुर बनने का एक चांस मिल जाता है। ये है कि यहां भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के जो मंदिर हैं, वो भगवान के धाम के समान है। तो यहां लोग महामाया के प्रभाव में है कि योग माया के प्रभाव में है, जैसे व्यक्ति की चेतना वैसे। देखिए, वृंदावन में असुर भी थे कि नहीं, बताया जाता है कि प्राय रोज लंच के पहले, भोजन के पहले भगवान एक असुर को मार देते, प्राय मतलब रोज सुबह का एक ऐसे रूटीन था कि लंच लेने के पहले एक असुर को कवर तो करना ही है, मतलब हर रोज एक न एक असुर आता था। तो वो असुर भी तो वृंदावन में रहता था, वृंदावन में रहते हुए असुर, मतलब वो वास्तव में वृंदावन में नहीं रहता है। धाम में रहने का मतलब ये नहीं है कि धाम के भूगोलिक जो क्षेत्र में रहना, उसी क्षेत्र में निवास करना धाम में रहना वो नहीं है। धाम में रहने का मतलब है कि वो चेतना होनी चाहिए। धाम में रहते हुए भी वो अगर माया का आवरण आ सकता है उसके ऊपर, अगर उसकी चेतना नहीं रही तो। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन जैसे जगह में कितने सारे लोग रहते हैं और इतने सारे लोग टूरिस्ट के रूप में आते हैं बाहर से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वृंदावन को देख रहे हैं, वो वृंदावन के बाहरी रूप को देख रहे हैं, वास्तव में वृंदावन को नहीं देख रहे हैं। हम लोग भी जब जाते हैं वृंदावन में हम क्या देखते हैं? कुत्ते देखते हैं, सुअर देखते हैं, बंदर देखते हैं, गटर देखते हैं और पंडों को देखते हैं जो हमेशा हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, हम यही देखते हैं, और गंदगी देखते हैं। लेकिन यह वृंदावन का क्या वर्णन है? चिंतामणि, चिंतामणि धाम है। हर कल्प वृक्ष सब जगह है, मणियां हैं सब, अरे कहां मणि कहां कल्प, क्या कुछ नहीं नजर आता है ना। तो हमारी भी, हमारे दर्शन भी जड़ दर्शन है, हम नहीं देख पा रहे हैं भगवान को, भगवान के धाम को भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। तो इसलिए भी ये भी भगवान का धाम तो है, लेकिन अगर यहां आकर किसी की चेतना भी जड़ चेतना है तो फिर भी यहां रहकर भी वो महामाया के प्रभाव में हो सकता है। इसलिए मायापुर का नाम मायापुर रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो अभक्त हैं उनकी आंखों के सामने महामाया का एक पर्दा लगा रहता है। हर एक धाम के लिए धाम रक्षक होते हैं। वो धाम रक्षक कौन होते हैं? शिवजी और पार्वती जी। पार्वती अर्थात दुर्गा अर्थात महामाया। तो उनका काम क्या है महामाया दुर्गा जी का? कि जो अभक्त हैं उनके लिए वो पर्दा डाल देती है। इसलिए मायापुर यात्रा में जो भी आप आए, आप जानते हैं कि मायापुर के बाहर कौन है? प्रौढ़ा माया और विद्ध शिवा, ये मंदिर है। जैसे वृंदावन के भी बाहर आप देखेंगे कि शिवजी हैं, वो क्षेत्रपाल हैं, रक्षा करते हैं धाम की, उसी प्रकार मायापुर में भी धाम रक्षक हैं प्रौढ़ा माया और वृद्ध शिव। और वो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो अभक्त है, जिसे गौरांग महाप्रभु के बारे में कोई विश्वास नहीं है, तो उसकी आंखों के सामने पर्दा डाल देती है और वो लोग फिर वो धाम को केवल मिट्टी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, कुछ समझते नहीं कि कैसे धाम है। इसलिए ये माया का प्रभाव ऐसे लोगों के ऊपर आता है, इसलिए जगह का नाम हो गया मायापुर। तो साक्षात भगवान के सामने रहते हुए भी कोई भगवान के वो माया महामाया शक्ति प्रभाव में आ सकता है। भगवान के धाम के रहने की बात दूर है। दुर्योधन साक्षात भगवान की आंखों के सामने थे, खड़े थे उनके सामने, फिर भी उनके ऊपर महामाया का प्रभाव था, योग माया का नहीं। और जब कृष्ण द्वारका में थे और गोपियां और ब्रजवासी जब वो वृंदावन में थे, फिर भी उनके ऊपर योग माया का प्रभाव था, हालांकि वो इतने दूर थे। तो मूल बात क्या है? हमारी चेतना, हमारी चेतना कितनी शुद्ध है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, उसके ऊपर निर्भर होता है सर। अगर आप वृंदावन के बाहर भी हैं, लेकिन अगर आपके भक्त में, आपके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है, तो आप एक चलते फिरते धाम हो जाते हैं, है ना। तीर्थ कुर्वन्ति कुर्वाणी, है ना, वो बोलते हैं भगवदस, वो कौन सा श्लोक है, क्या, विदुर जी जब आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं भगवत विदा भगवतस स्वयं तीर्थ विभो, कि आप स्वयं तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं आप। अंतस्थेन गदाभ्रत, क्योंकि आप अंतस्थेन में, आपके हृदय में गदाभ्रत, गदाधारी श्री कृष्ण को आप धारण किए हुए हैं हृदय में, क्योंकि कृष्ण आपके हृदय में है, इसलिए आप चलते फिरते तीर्थ स्थान है, आप चलते फिरते वृंदावन है। तो अगर आप वृंदावन के बाहर भी हैं लेकिन आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो आप वृंदावन में हैं।